ओम शांति। आज का प्रश्न है, पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन क्या है? पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन क्या है? उत्तर है, सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। ये मुरली है 7 मार्च 1981। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई भी पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो, पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, और पाप वहां होता है कहां? और लाइट में भी तो कर लेते लोग पाप। पाप वहां होता है जहां बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं, तो सदा कौन याद रहता है? पाप खत्म हो गया है ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप आत्मा, पाप खत्म हो गया। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, ये दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वे हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तिली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। ये भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। तो ये प्रश्न था, 7 मार्च 1981 का है। पाप कर्मों से छुटकारे पाने का साधन बाबा ने बताया। क्या क्या साधन बताया? अपने को क्या समझो? लाइट हाउस और माइट हाउस समझो। और क्या बताया? जहां पाप है वहां बाप नहीं, अर्थात बाप की विस्मृति है तो पाप होता है। और क्या बताया? पाप से बचने का साधन आज से क्या करो? हाँ, दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पुण्य पुण्य कर्म ही करने हैं, पाप कर्म हो नहीं सकता। स्वप्न संकल्प और स्वप्न में भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे पाप कर्म होने के कारण क्या है और उनसे बचने का, छुटकारा पाने का साधन क्या है। तो पाप कर्म कब होता है? विस्मृति। और उसके अलावा कहां होता है पाप कर्म? स्वयं की विस्मृति हो जाती है। तो पाप अटेंशन की कमी। वास्तव में पाप कर्म का जो मुख्य कारण है वो है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही सारे पाप कर्म होते हैं, और देह अभिमान की भी बहुत बड़ा विस्तार है। जैसे आत्मा की विस्मृति हो जाती है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा सोमान की सीट पर सेट रहो। तो जैसे हम अपने सोमान से विस्मृति हो जाते हैं तो पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था, ये देह भी आपका नहीं है, इस देह से भी बेघर हो। ये देह भी किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। मना ये मैंपन खत्म हो जाओ और क्या आ जाए? कल की मूर्त है, बाबापन आ जाए। देह ये मैंपन खत्म हो जाए और बाबापन आ जाए। तो ये कितनी बड़ी विस्मृति हुई पड़ी थी, जिसके कारण पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, आत्मा पतित बनती गई। तो इस स्मृति स्वरूप बनने के लिए विशेष रूप से अटेंशन देने की जरूरत है। लंबे समय, इसलिए पहला जो हम सबका पाठ है, मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, अगर वो हमको स्मृति में रहता है तो नेचुरल हमारे जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है देह अभिमान, ये है पाप होने का मुख्य कारण। क्योंकि जब हम देह अभिमान में आते हैं तो परिवार में आते हैं या समाज में आते हैं तो बहुत प्रकार की अपनी जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं से जैसे एक तृप्ति होती है, आत्मा को जैसे एक सम्मान मिलता है समाज से, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पाप करना शुरू कर देते हैं, या समाज में हमारी अच्छी साख बन जाए, पैठ हो जाए, हमारा भी कुछ रुतबा हो, मान सम्मान हो, तो उसके लिए भी समाज में कितना पाप कर्म करते हैं। विशेष रूप से आजकल राजनीति में देखते हैं तो राजनीति में भी एक दो को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या कुछ बोल देते हैं, भले वो कितने कोर्ट कचहरे में केस होते रहे। तो वो सारा बॉडी कॉन्शियस स्तर पर हो रहा है। तो जितना भी आज तक हमने शिक्षा ग्रहण की थी अज्ञान काल में, वो सारी दैहिक स्तर पर थी, इसलिए दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते गए। तो बाबा ने हम सबको आकर सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल हमारी पहचान है वो हमको दिलाई कि तुम एक आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, महान आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। इसलिए उस दिन था ना, जैसा लक्ष्य है वैसे उसी अनुसार लक्षण आते जाएंगे। और था ना, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा स्मृति रखो उस दिन, मुरली का था ना मेन हेडिंग संडे की, मुरली का पिछले संडे का, कि स्वार्थ की बजाय सेवार्थ कार्य करो। तो हम स्वार्थ सर्व की सेवार्थ, हाँ सर्व की सेवार्थ। तो स्वार्थ के कारण ही सारे पाप कर्म हुए हैं, क्योंकि आत्मा जब निजी हित के लिए अंदर में कुछ ना कुछ कामना रहती है तो कोई ना कोई जुगाड़ करती है, अपना रास्ता तलाशती है, अपने पाप कर्मों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए अनेक प्रकार के मार्ग ढूंढती है। इसलिए देह अभिमान ये मुख्य कारण है जिससे पाप होते जाते हैं। और दूसरा है संगत का भी असर होता है, जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है, है ना। घर में अगर कोई बच्चा अच्छा है, माँ बाप ने अच्छे संस्कार डाले हैं, लेकिन अधिकतर तो वो बच्चा स्कूल में जब जाता है तो उन्हीं के साथ में रहता है, तो कुछ में तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, संग में जाता है तो धीरे धीरे दोस्तों के स्वभाव संस्कार, उनके संग, क्योंकि जो संस्कार हैं वो संस्कार बचपन में जल्दी ग्रहण किए जा सकते हैं, तो फिर उसी अनुसार बच्चे संगत में चले जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, और फिर उनको कई प्रकार की बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जिससे माँ बाप भी दुखी, फिर उनका भविष्य भी अंधकार में चला जाता है। हमने एक बार बॉम्बे गए थे तो जहाँ एस्टर वर्ल्ड है, हाँ, तो वहाँ हम गए थे तो देखा हमने कॉलेज के बच्चे, वो घर से फोन आ रहा तो बोल रहे मम्मी हम कॉलेज में बैठे हैं। तो बोले आवाज कहाँ की आ रही है, बोला थोड़ा सा हम बाहर निकले, बाकी हम कॉलेज में हैं। तो देखो कितना झूठ बोल रहे बेचारे, लेकिन वो उधर घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, और घर वाले उनको जाने नहीं देते होंगे या कुछ, वो भी उनकी कुछ समस्याएं होंगी, और नशा किया हुआ है बेचारे। तो माँ बाप ने उनके ऊपर कितना भरोसा रखा है, कितना विश्वास रखा है कि हमारे बच्चे ये बने, लेकिन संग में ऐसे चले जाते हैं, वो संग का असर फिर जीवन को बर्बाद कर देता है। तो सच में हम इस ब्राह्मण परिवार का इतना श्रेष्ठ संग मिला है, इसलिए दीदी जी कहते थे सबसे बड़ी संभाल संघ की संभाल। तो ब्राह्मण संसार में भी अगर हम आए हैं तो हमारा संघ किस तरीके से हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, या संघ के बहाव में अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं करते जा रहे हैं, समय हमारा वेस्ट तो नहीं होता जा रहा है, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है। बाबा कहते हैं पुण्य कर्म करने का समय है, जमा का खाता बढ़ाने का समय है। ये बैंक केवल अभी खुलती है, इस सीजन की मूल्य में था ना कि अपने जमा के खाते में देखो कितना जमा है। तो इस बैंक में पुण्य कर्मों के बैंक में हम दिन प्रतिदिन पुण्य कर्म करते जा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करते जा रहे हैं, तो दुआएं मिलेंगी तो आत्मा को पंख लगेगी उड़ने के लिए, ताकत मिलेगी। तो संगत का भी असर होता है कि किस संग में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और है पाप होने का कारण है कि हम अपने ब्राह्मण जीवन के जो मर्यादाएं हैं, जो नियम हैं, उन नियमों का अगर भूल जाते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा के अंदर है, तो फिर जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो भी हमारे जो कदम हैं वो सामान्य रूप से पाप कर्म की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अपने लक्ष्य को भी अगर हम सामने नहीं रखते हैं, नियम मर्यादाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते हैं, तो भी पाप कर्म होते जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमको स्वयं ही अपने स्तर पर, व्यक्तित्व स्तर पर या संगठन में हम रहते हैं तो एक दो से सीखने की भावना होनी चाहिए। जब तक हम एक दो से नहीं सीखते हैं तो हमारी दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, और अपने अंदर ये एक गिल्टी कॉन्शियस पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हम संगठन से दूर होने लगते हैं तो बहुत सारी कमी कमजोरियां हमारी रह जाती हैं। संगठन में आने के बाद हमको रियलाइज होता है कि हमारे में कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं, ये हमारे से पाप कर्म हो रहा है, और पाप कर्म जो बड़ा फिर दिन प्रतिदिन सूक्ष्म रूप ग्रहण करता जाता है और उसका हमको पता भी नहीं चल पाता है। जैसे कि बाबा की मुरली में है तो पाप कर्म जो है संकल्प स्वप्न तक, इसमें बताया ना कि अगर संकल्प और स्वप्न में भी किसी को टच करते हैं तो वो भी कितना बड़ा पाप बन जाता है। तो कितना ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, जो इस पुरुषार्थ को हमको अचीव करना है, उसको हमको क्रॉस करना है, उस पर हमको विजय प्राप्त करनी है कि संकल्प और स्वप्न में भी किसी की देह को टच न करे। किसी की देह को तो छोड़ो, बाबा ने कहा अपनी देह को भी टच नहीं करना, क्योंकि ये भी देह तो हम दे चुके हैं और इसको भी हम अपना समझ ले तो भी हम अनंत में ख्यानत है। तो ये कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो इसके ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है कि संकल्प और स्वप्न में भी हम अपने देह से भी उपराम रह रहे हैं, और वो तभी होगा जब हम स्थूल रूप से सारे दिन में दिनचर्या हमारी व्यवस्थित होगी, उसी अनुसार श्रीमत अनुसार मर्यादा अनुसार हम उसको चला रहे हैं। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी ईश्वरीय नियम कायदे बने हैं उनके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, तो ये हमारे में कुछ ताकत आएगी, तो ये आत्मा को पंख लाएंगे। नहीं तो सामान्य दिनचर्या में अगर चलते रहेंगे तो जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, या पाप कर्मों से छूटने का जो आत्मा को एक ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तो इसलिए कुछ विशेष रूप से स्वयं के ऊपर ही नजर रखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपने पाप कर्मों से, क्योंकि अनेक जन्मों के पाप कर्म आत्मा के अंदर हैं, भले अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन कौन से जन्म के पाप अंदर में है वो तो निकलेंगे बाहर। बाबा ने कहा था ना उस दिन परसों के, वैद्य लोग दवाई तो देते हैं, उतल तो खाएगी, बीमारी बाहर आएगी लेकिन घबराना नहीं। उसी तरह ब्राह्मण जीवन में अगर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं तो कमजोरियां भी सूक्ष्म रूप से हमको हलचल में लाएंगी, कमजोरियां भी मन को डुलायमान करेंगे, तूफान लाएंगे, लेकिन उसमें हमको घबराना नहीं है। और वो तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमारी बुद्धि में। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा ना कि पाप तब होता है जब विस्मृत हो जाता है, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति नहीं है। लाइट माना रोशनी, ज्ञान, जहां अंधकार है वहां वहीं पाप होंगे। तो माना अंधकार कौन सा? अंधकार छाया हुआ है, ज्ञान की रोशनी चाहिए वहां। ज्ञान का अभाव है तो ही हमारे से पाप करने में लगे, क्योंकि अगर कोई पाप का कर्म है उससे निकलने की अगर हमको विधि नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ही हमारे से पाप कर्म होते हैं। अगर हमको जानकारी है उससे निकलने की तो पाप कर्म करने से हम सेफ हो जाते हैं, चाहे मनसा वाचा कर्म संबंध संपर्क में भी आते हैं तो पाप कर्म होते जाते हैं अगर हमको विस्मृत हुए पड़े हैं। अगर स्मृति है तो उससे हम सेफ रहते हैं। तो स्थूल रूप से भी पाप कर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा पहनावा है। अगर हमारा पहनावा ऐसा है जो दूसरों को आकर्षित करे, है ना, आजकल तो पहनावा इतना ये है कि कई बार चाहे बहने हैं भाई हैं, उनकी जो ड्रेस होती है ना, स्किन ड्रेस होती है, स्किन वाली ड्रेस, अब कई बार तो ऐसे लगता है जैसे कपड़े है ही नहीं है, वो कितनी अंदर से खराब बात लगती है। अब बहने हो या भाई हो कोई भी हो, वो ड्रेस उस तरीके से पहनी होती है, भले उन्होंने पहनी है लेकिन दूसरे देखो क्या। अगर समाज का जो माहौल बिगड़ता जा रहा है, जो विकारों का जो अंश वंश या जो भी कहो, विकारों की तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के संसाधन है, तो वो विकार तो चाहे मेल है या फीमेल है, आत्मा सबके अंदर वो बैठे हुए हैं। तो हमारा पहनावा कैसा है? ब्राह्मण जीवन में भी हमारा पहनावा बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन आजकल दिन प्रतिदिन फैशनेबल ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। तो ये दिन मम्मा का ड्रेस देखो कितना ये है। तो दूसरे के पहनावे को देखकर अगर ये तो आर्ट डिपार्टमेंट का ये जिम्मेवारी है, उसने बनाया क्यों ऐसे, आप ही आर्टिस्ट है। तो वहां जो है, वहां तो इसकी बात ही नहीं है, देहवान की बात ही नहीं है। और ये वो जो बनाया हुआ है वो अभी संगम का है, बाकी वहां का थोड़ा हमने ओरिजिनल देखा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा पहनावा भी है, उसमें भी अनेक प्रकार के पाप कर्म होते जो हमको पता नहीं चल पा रहा कि पाप कर्म बढ़ते कहां से जा रहे हैं। तो हमारा पहनावा भी कैसा है वो भी हमको स्वयं को ही देखना पड़ेगा। और ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के, सिंपल के बजाय अनेक प्रकार के फैशनेबल पहनते हैं, जैसे कई बार चर्चा होती रहती है। हाँ, बाइट में भी अनेक प्रकार का फैशन होता है ना। तो ये जो नियम है वास्तव में ये हमारी सुरक्षा कवच है, पाप कर्मों से मुक्ति का साधन है। दूसरा, पाप कर्म होते हैं संकल्पों से भी होते हैं, भले हम स्थूल रूप से तो ठीक हैं लेकिन संकल्प करते 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 जब हम संघ में आते तो फैमिलिटी में आ जाते हैं। उस संसार की फैमिली के प्रति हमारे इतने संकल्प नहीं चलेंगे, लेकिन ब्राह्मण संसार में आकर हमारी जो दिन प्रतिदिन फैमिलिटी बढ़ती जाती है स्वभाव संस्कारों के उंच के अनुसार, भले हम बाहर से तो नहीं लेकिन अंदर में संकल्पों में कहीं विकारों की वायु तो नहीं चल रही, हमारे बोल से कुछ उस तरह के विकारों के कोई शब्द तो नहीं निकल रहे हैं, भले हम थोड़ा अटेंशन तो रखते हैं लेकिन अगर अंदर से हमारा परिवर्तन नहीं हुआ तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमारे बोल में बदलाव नहीं आएगा, हमारे संकल्पों में नहीं आएगा, तो कितनी सूक्ष्म रूप से हमको जांच करने की जरूरत है। तो ये पथ कोई साधारण नहीं है, इतना ऊंचा पथ है जिस पर हमको बाबा ने चलने योग्य समझा है, तो उस पर पथ पर चलने के लिए हमको उतना ही सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते लाइट हाउस माइट हाउस, लाइट हाउस माना क्या, सदा जो सबको रोशनी दे। तो अगर हम अपने जीवन को रोशन नहीं कर पा रहे तो दूसरे के जीवन को रोशन क्या करेंगे। तो स्वयं को देखना है कि स्वयं के जीवन में कहां कहां अंधकार है, कहां कहां पाप कर्म होते जा रहे हैं, मनसा से भी वाचा से भी या कर्मणा से भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या संबंध संपर्क में आने से हमारा उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या हम उनसे प्रभावित हो पा रहे हैं। संबंध संपर्क में भी हमारी फैमिलिटी तो नहीं बढ़ती जा रही है, उससे भी नहीं आ रहा प्यारा। हाँ, सेवा हम करते हैं तो स्वयं को ये भी जांच करने के जहां हमारा संबंध संपर्क में कुछ ज्यादा अटैचमेंट होती तो वहां से किनारा करने की भी ताकत रहनी चाहिए हमको। सेवा में जाना तो पड़ता है, संबंध संपर्क में आना तो पड़ता है, लेकिन जितना हम बाबा कहते हैं जितना प्यारा उतना ही न्यारा, एक सेकंड में वहां से डिटैच भी होना अति आवश्यक है। तो और क्या बाबा ने बताया कि क्या स्मृति में रखो, क्या करो, साथ में इसके लिए दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि जब हम अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते हैं बहुत सारी बातों से किनारा करने के लिए अपने आप को बांधना पड़ेगा, जबरदस्ती बांधना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार तो अनेक जन्मों के आत्मा के अंदर है, किसी एक जन्म के नहीं है, जन्म जात के संस्कार होते हैं, क्योंकि बचपन के संस्कार होते हैं, हम देखते हैं लंबे समय के बाद भी कोई कोई ऐसे संस्कार होते हैं कि इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी हमारे वो संस्कार जाते नहीं है, चाहे वो झूठ बोलने के संस्कार हो, चाहे वो हेराफेरी के संस्कार हो या चोरी करने के संस्कार हो। सूक्ष्म रूप से बड़ी बड़ी बातें तो छूट जाएंगी लेकिन जो छोटी छोटी बातें वो भी छूटती थोड़ी नहीं, इसलिए कहा जाता है चोर चोर रिश्ते जो जाए लेकिन हेरे फेरे से न जाए। तो वास्तव में कितना सूक्ष्म रूप से कि हम भले स्थूल रूप से छोड़ दिया लेकिन मन से तो नहीं छोड़ रहे, मन से अर्थात दूसरों के अवगुण ग्रहण कर रहे हैं तो ये भी तो पाप हो रहा ना, दूसरे के अवगुण ग्रहण करके फिर उसको फैला रहे हैं ये भी तो पाप हो गया, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आत्मा उससे बोझल बनती जा रही है, तो कहां उड़ान आत्मा भर सकेगी, कहां उसको ताकत आएगी। तो इसके लिए हमको छोटे छोटे योग के प्रयोग करने चाहिए, पापों से बचने का जो साधन है वो हम सब जानते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप की याद, अगर बाप की याद नहीं है तो पाप होते रहेंगे, तो बाबा की याद को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें कुछ योग के अभ्यास स्वयं के स्तर पर शक्तिशाली बनाने होंगे, स्वयं की कमेंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, निर्माण करनी पड़ेगी शक्तिशाली योग के लिए। जैसे परसों बाबा ने कहा सवेरे सवेरे अपने क्या करो, अपने शरीर से न्यारे हो जाओ, ड्रिल करो सवेरे सवेरे, तो वास्तव में सबसे अच्छी ड्रिल है इस बॉडी से टोटली डिटैच, जैसे शरीर मेरा है ही नहीं, बताया ना बाबा भी कितना प्रयास करते हैं हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हम बच्चों को पुरुषार्थ की मंजिल पर पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ, और इतने सालों से करने के बाद भी अगर हम नहीं छूट पा रहे हैं तो क्या कहा जाएगा। तो स्वयं को देखना है कि उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, तो ये ड्रिल बहुत आवश्यकता है कि जितना हम इस बॉडी से डिटैच होंगे लंबे समय तक, और डिटैच होने के बाद लाइट के साथ बाबा ने कहा माइट भी चाहिए, और वो ताकत मिलेगी जब बीज रूप बाप से कंबाइंड होंगे, तो लंबे समय तक शांति धाम में स्थित होकर ये अपने आप को अनुभव करना है कि मैं बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हूं, जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो सारी जैसे मुझे आत्मा में आती जा रही हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय की बात है, और जितना हम इस कदम पर इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं उतनी हमारी कमजोरियां भी बाहर निकली, लेकिन कमजोरियों में हमको घबराना नहीं है, हमको उसमें डिसअल्टर्ड नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना करने के बाद भी अगर पुरुषार्थ की प्रॉपर जो हम उसका परिणाम चाहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मन में गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाती है कि इतना तो कर पा रहा हूं, मेरा क्रोध तो जा नहीं रहा, मेरा अंदर से चिड़चिड़ापन तो जा रहा, मेरे चेहरे पर तो खुशी आ ही नहीं रही है, सारा मेरे से किनारा ही कर रहे हैं, ये सब चीजें आएंगी, क्योंकि जो आगे बढ़ा माया भी अनेक प्रकार से हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, वो भी अपना हर प्रयास हमारे प्रहार हर प्रयास से प्रहार कर रही है, तो उससे सेफ रहने के लिए हमको मुख नहीं मोड़ने का, धीरे धीरे लगे रहने का है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मे हैं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, ये दृढ़ संकल्प करो। और दृढ़ संकल्प वालों को भी बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को क्या देते हैं, मुबारक दे। तो बाबा कहते कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान तुम बच्चों को मुबारक दे रहा है ना। दुनिया में एक आदमी दूसरे को मुबारक देता है और वो भी तो मुबारक ऐसी होती है, लेकिन भगवान दे रहा है डायरेक्ट, दिल से मुबारक दे रहा है कि तुम बच्चों में इतनी हिम्मत है पुण्य कर्म करने की, तो कितनी खुशी की बात है। तो बाबा कहते हमेशा अपने आप से दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, जहां पाप है वहां बाप नहीं है और जहां बाप है वहां पाप नहीं। तो हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड रहने की आदत डालनी है। तो सबसे पहली बात जो हमने जिक्र की कि देह अभिमान सब पापों का जड़ है। तो इस देह अभिमान से बाबा कहते निरंतर अपने को आत्मा समझो। मुरली में अगर हम सुनते हैं तो कई बार प्रश्न उत्तर के बाद बाबा ओम शांति के बाद कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठे हो, क्योंकि बदलाव तो हमारा वहीं से पहले पाठ से होगा। तो वो हमारा देह अभिमान से मुक्त होने के लिए देह अभिमानी स्थिति की आवश्यकता और हमको इस पर पूरा करना है। तो स्वयं और दूसरा स्वयं की देह को आकर्षित बनाने के लिए, अर्थात जो बात होगी पहनावे की कि हमारा पहनावा ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर हम सूक्ष्म रूप से पुरुषार्थ इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम स्थूल रूप से तो पुरुषार्थ करें, सामान्य तो रहें। हमारा जीवन बाहर से तो इतना नॉर्मल रहे, त्यागी रहे कि दूसरों का कोई संकल्प व्यर्थ नहीं चले। हमने देखा कई भाई बहने हैं भले वो सूक्ष्म रूप से उतना पुरुषार्थ देखने में नहीं आता है, लेकिन उनकी स्थूल दिनचर्या इतनी अनुशासित है, वो थोड़ा सा पुरुषार्थ के लिए, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनके प्रति देखने से उनको कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्मल रूप से उनका बाहरी जो पहनावा भी है, अंदर से पुरुषार्थ तो करते होंगे जरूर, लेकिन बाहरी रूप से सामान्य दिनचर्या में चलते हैं, उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देता है। तो स्थूल जो मर्यादा है इन पर भी चलना बहुत अनिवार्य है। चेकिंग करनी है हमारे मन में कौन कौन से, बाबा ने कहा ना काल की मुरली में था कि प्राप्तियों के खजाने कितने हैं तुम बच्चों के लिए, प्राप्तियों के झूले में झूलते रहे। मेले में क्या होता है, मिलना और झूलना। तो बाबा से हम मिलन निरंतर मिलन मनाते जा रहे हैं, उससे जो प्राप्तियों ही हों, अजामिल जैसी पतित आत्माएं हम हो गई थी, तो हम अजामिल जैसी पतित आत्माओं को उसने हमारे ऊपर कितना उपकार किया, कितने अपकारी बन गए थे और हम पर उपकार किया है, तो हमारे अंदर उसके प्रति कितना प्यार बढ़ना चाहिए, उसकी याद स्वतः आनी चाहिए दिन प्रतिदिन। और याद स्वतः आएगी अगर हम उस पर नजर रखेंगे। आज की मुरली में ना कि बाप की नजर मिलाते रहो, बुनियाल करते रहेंगे, तो कितना हमने उसको अपनी आंखों में बसा के रखा था ना। चार दिन पांच सात दिन पहले स्लोगन था, जिनकी नजरों में बाप है उनको माया की नजर लग नहीं सकती है। तो बाबा को इन आंखों से हमने कितना पकड़ के रखा हुआ है। योग का प्रयोग बहुत अच्छा है, जब भी हम बैठते हैं तो अगर आंखें बंद करते हैं तो सोचना इन आंखों से बाबा को पकड़ के रखा हुआ है, आंखों से पकड़ के रखा हुआ नजर से निहाल किंदा स्वामी किंदा स्वामी क्या होगा माता जी, नजर से निहाल किंदा स्वामी निहाल किया, किया नजरों से निहाल किया स्वामी। तो हमारी दृष्टि जो है, दृष्टि में बाबा बसा हुआ है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो आत्मा ग्रहण करती है देखने से करती है, सुनने से भले उतना याद नहीं रहेगा लेकिन जो देखती है वो सारा हमारी दृष्टि में समाता जा रहा है। तो लंबे समय तक हम बाबा को कितना इस दृष्टि में समा रहे हैं, या फिर उसके जो उपकार हैं वो हमारी स्मृति में कितना रह रहे हैं, तो वो ही संस्कार धीरे धीरे हमारे बनते जाएंगे और उसी के अनुसार हमारा जीवन अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। तो ये भी हमको स्वयं को देखना है कि हमने अपनी दृष्टि में किसको बसा के रखा हुआ है, संबंध संपर्क में हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है, या अपने मान शान के पीछे तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मान शान की आदत जो बड़ी सूक्ष्म रूप से होती है, भले बाहर से नहीं मिलती लेकिन अंदर से आत्मा तृप्ति चाहती है तो अनेक प्रकार के रास्ते ढूंढने लगती है, अनेक प्रकार के मार्ग तलाशने लगती है, और जैसे जैसे मान मिलता जाएगा तो पाप कर्म भी उतना हम बाबा से दूर होते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा सोमान में रहो, जितना सोमान में स्थित रहेंगे सम्मान तो परछाई की तरह पीछे आएगा। और दूसरा विशेष बात, जितना हम सोमान में रहते हैं उसी सोमान से दूसरे को देखना है। अगर हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण चेंज नहीं होता है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम तो सोमान में रहते हैं लेकिन उनको उस सोमान से नहीं देखते हैं। वो भी तो उसी भगवान के बच्चे हैं ना, भले वो सामने वाला कभी विस्मृत हमको दिखा रहे कि वो सोमान में स्थित नहीं है, लेकिन अगर हम सोमान में स्थित होकर सामने वाले को सोमान में स्थित होने का वाइब्रेशन दे दें, उसको संकल्पों की ताकत देंगे, तो उसमें भी ताकत आएगी, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण चेंज होगा। नहीं तो अपने को लगेगा कि मैं तो बहुत ऊंचा हूं, ये तो ऐसे ही लल्लू प्रसाद ही है। तो स्वयं को जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं उसी दृष्टिकोण से दूसरे को देखना है। हाँ, सामने वाला ऊंची दृष्टिकोण है तो हमको उस दृष्टिकोण से स्थित स्वयं को स्थित करना है, अपने सम्मान में स्थित रहना है। और बताया जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जन्मजात संस्कार, कई बार हमारा पुरुषार्थ नेचुरल चलता रहता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन में दिखाई नहीं देता है, तो सिद्ध करता है कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार अभी भी आत्मा के अंदर हैं। तो हमको विशेष रूप से थोड़ा टाइम निकालकर योग अग्नि से उसको दग्ध करना है, नहीं तो विकारों की अग्नि तो अंदर दहक रही है। तो एक्सेप्ट करना है कि सचमुच हमारे अंदर अभी भी विकारों की अग्नि है, उस अग्नि को योग अग्नि से समाप्त करना है। तो ये भी है कि पूर्व जन्मों के संस्कार बिना योग के समाप्त होने वाले नहीं है, नहीं तो क्या है, फिर वो पूर्व जन्मों के संस्कार पड़े होंगे, सुख भोगने के पड़े हैं संसाधनों के या घूमने फिरने से, वो ही हम खींचते रहेंगे। अगर दिन प्रतिदिन हमारा घूमना कम होता जा रहा है या आवश्यकताएं जो अनावश्यक इच्छाएं उनके प्रति हमारी रुचि थोड़ी कम होती जा रही है, तो सिद्ध करता है कि हमारा पुरुषार्थ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। अगर वो अनावश्यक इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, घूमने फिरने के लिए ज्यादा प्लानिंग बनाते जा रहे हैं या खाने पीने के ज्यादा बनाते जा रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे उनसे भी छूट ना माना जा रहे हैं हम उनमें, उनसे हमारा धीरे धीरे पांव पीछे आना चाहिए, तो हमारा पुरुषार्थ यथार्थ कहा जाएगा। फिर बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनको हमको स्मृति में रखना है कि सचमुच बाबा से हमको कितनी ऊंची प्राप्ति हुई है, वो प्राप्तियां हमारे जीवन में कहां तक है, कहां तक हम उनको स्मृति में रखते हैं। नहीं तो अगर उनकी स्मृति नहीं है तो हद की प्राप्तियों के पीछे जो मृग तृष्णा के समान है, जो बाबा कहते हैं वो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, है ना, तो मृग तृष्णा के समान जो है प्राप्तियां उनके पीछे नहीं भागना, और सदा ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहे, है ना, और वो तब जलेगी पहले स्वयं हम ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान का दान करें, ज्ञान की लेन देन करें, तो ज्ञान का दीप हमेशा जलता रहे, है ना। मुरलियों से इतने सारे मुरलियों में अनेक प्रकार के महावाक्य आते हैं लेकिन इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाते हैं, तो ये भी हमको एक्सेप्ट करना है कि क्यों निकले जा रहे हैं वो, कितने मुरलियां आती है चली जाती हैं, उस एक मुरली रहेगी उसी दिन तो याद रहेगी लेकिन अगर दूसरी मुरली आएगी पिछली भूल जाती है, तो उस पर भी थोड़ी थोड़ी हमको नजर रखनी चाहिए। संडे की मुरली थी, पिछले संडे की मुरली थी त्रिमूर्ति मिलन, इतना सुंदर था, उसमें सफलता का मंत्र था, फिर बाबा ने सेवा के बारे में कहा था, विशेषताओं के बारे में कहा था, तो उनको भी अगर हम स्मृति में रखते हैं तो हमारी बुद्धि शार्प होती जाएगी, साफ होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, तो ही बाबा का प्यार ठहरने लगेगा, तो ही उसके प्रति हमारी खींच होगी, आकर्षण होगा। जैसे बताया ना बाबा ने कल की मुरली में कि विदेश में गए थे, उनकी खींच बढ़ रही है अभी, तो ये आत्माएं जो उनको समझाने गई थी दादी जी जगदीश भाई जी, तो इन्होंने उतना पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ का प्रभाव भगवान से प्यार जो प्रीत थी उनकी, वो वहां साप छोड़ के आई, इसलिए बाबा ने कहा वो लास्ट सीन होगा, वो अंत में आकर आत्मा आकर्षित होंगी, वो खींचेंगी, तो बेहद का वैराग्य जो कल के मूल्य में था, कितना मूर्ता योगी बन रहे, अपने इस मैंपन को समाप्त कर बाबापन कितना आता जा रहा है। तो ये मुरलियां जो हमारा ऑक्सीजन है, हमारी खुराक है, हमारे वास्तव में कवच है, अस्त्र शस्त्र है, अगर यही हमारे हाथ में नहीं है तो पाप कर्मों से हम छूट नहीं सकेंगे, क्योंकि माया तो भिन्न भिन्न रूप से अनेक जो रूप हमको पहले कभी दिखाई नहीं दिए उससे नए रूप से माया आएगी, क्योंकि जिस रूप से हमने माया को पहचान लिया उस रूप से नहीं आएगी, वो कुछ नए रूप से आएगी। तो जितना ज्ञान को हम ज्ञान का दीप जला के रखेंगे तो माया आ नहीं सकती, जानवर भी कहां आता है, अंधकार में आते हैं, तो ये माया रूपी जानवर भी जो है जैसे हम ज्ञान से विस्मृत हैं तो माया अपना काम करती रहेगी, तो ज्ञान की रोशनी ज्ञान का दीप हमेशा जलाकर रखना है। दूसरा, समय की स्मृति भी चाहिए कि वास्तव में कौन सा समय चल रहा है, बहुत पाप कर्म कर लिए, अभी पुण्य कर्म करने का समय चल रहा है, थोड़ा सा समय बाकी है ना, तो इस समय भी हम पुण्य कर्म के तो सारा कलम हमारा खराब हो जाएगा, आगे पद भी छोटा हो जाएगा, तो अब ये पुण्य कर्म करने का समय है, जमा का खाता बढ़ाने का समय है, तो अपने खाते को चेक करना है कि सचमुच हमारे खाते में दुआएं जमा हो रही हैं, पुण्य जमा हो रहा है, दूसरों को सुख दे रहे वो जमा हो रहा है, या कहीं हमारा खाता खत्म होता नहीं होता जा रहा है, और ही लेस तो नहीं होता जा रहा है, तो अपने खाते को भी चेक करना है कि हमारे खाते में दिन प्रतिदिन कितनी वृद्धि होती जा रही है। तीसरा जो नेक्स्ट बात है कि योग अभ्यास, योग अभ्यास बहुत जरूरी है। अलग अलग रूप से हमको योग अभ्यास करने हैं। जो भी हम मुरली सुनते हैं उसको हमको योग में परिवर्तन कर देना है ना। जैसे बताया ना कि ज्वालामुखी योग या बीज रूप अवस्था का योग, तो उसको हमको बुद्धि से नया विजन क्रिएट करके अपने पूर्व जन्मों के जो पाप हैं या इस ब्राह्मण जन्म को जलते हुए देखना स्थूल रूप से। तो नए नए विजन क्रिएट करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नवीनता होनी चाहिए जीवन में। अगर जीवन में नवीनता नहीं है तो फिर जीवन में निरस्ता आती जाएगी दिन प्रतिदिन। जैसे अपने जीवन से निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, हताश रहेंगे, मुरझाइश रहेगी, है ना। चार दिन पहले था, अगर बच्चों के जीवन में उदासी है, मुरझाइश है, अर्थात अपने लक्ष्य को भूले हुए हैं, तो हमको लक्ष्य को भी सामने रखना है। तो जीवन में नवीनता अति आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य साधारण नहीं है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उतना आत्मा के अंदर ताकत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, नहीं तो पाप कर्मों से छूटेंगे कैसे, क्योंकि पाप कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों का है। अगर आत्मा बोझिल है तो ऊपर उड़ कैसे पाएगी। तो अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा में उमंग उत्साह के पंख लगाने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ नवीनता होनी चाहिए। चाहे हम लिखने की करें, चाहे पढ़ने की करें, चाहे सुनाने की करें, किसी ना किसी तरीके से योग में नवीनता चाहिए, तो ही हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें थी जो हमको अपने लक्ष्य में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अगर हम याद रखेंगे तो पाप कर्मों से छुटकारा पा सकेंगे। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं और भी बहुत सूक्ष्म पाप होते हैं। जैसे हम योग में बैठे हैं, योग में अगर मोबाइल बज जाता है ना, कल परसों एक माता जी शांति स्तंभ पर ही बात करना चालू कर दिया, है तो बोली वाली माता बेचारी, लेकिन कर्मों की फिलॉसफी थोड़े छोड़ेगी, बोलापन बहुत थोड़ा छोड़ेगी, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो वहीं से बात शुरू कर दिया, वो एक दो मिनट बात करती रही बेचारी थी बोली वाली वो, लेकिन सब थोड़ा उसको समझेंगे बोली वाले। और भी सूक्ष्म बहुत होते हैं। अब शांति स्तंभ में योग तो चल रहा है, एकदम डेड साइलेंस है, और वहां कोई चक्कर मार रहे हैं, भले वो योग ही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले तो किसी ना किसी का तो संकल्प चल रहा है ना। तो हमको कब कहां क्या करना है वो भी देखना चाहिए। योग में अगर हम बैठे हैं तो वहां भी अगर हमको नींद आ रही है, उस वायुमंडल को खराब करने हैं, तो बाबा ने कहा वहां भी उस वायुमंडल में बैठ के अगर हमको नींद आती है तो भी हमारा पाप कर्म बढ़ता जा रहा है। कोई नया व्यक्ति, चलो पुराना हम समझ जाते हैं, ठीक है भाई इसको रेस्ट नहीं मिली हुई है, बीमार हुआ, अब नया कोई भाई आता है तो बोलेंगे ये तो ये सो रहा है इधर आके क्या कर रहा है, तो वो भी हमारा पाप कर्मों का। तो वो उसको स्वीकार करके उसको, इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते भी योग करो, क्योंकि बैठा बैठा नहीं है, कोई सूखा ब्राह्मण जीवन नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते याद कर सकते हो, नेचुरल है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हार्ट योग नहीं है, सहज राजयोग है। तो अगर हमको नींद आती है वहां से, वहां से उठ के जाके चलते फिरते भी योग नहीं लग रहा है तो कुछ पढ़ाई पढ़ो, वो भी नहीं लग रहा है कुछ रसोई में काम करो। तो उनको जरूरी है कि उसको हमको, हाँ अगर हमारे में क्षमता है कि हम उसको कर सकते हैं, हमको करना है। अगर नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से तो अपने को किसी ना किसी काम में बिजी कर देना है, चाहे वो स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, ताकि हम इस चीज से मुक्त होने के अपने खुद ही रास्ता ढूंढे। नहीं तो एक तो पहले से पाप कर्मों का बोझ है और 10 आत्माएं हमको देख रही है ये कर नहीं पा रहे, तो 10 आत्माओं का बोझ हमारे से पर और चढ़ जाएगा। तो सूक्ष्म रूप से भी कितने होते हैं, तो ये भी चीजें हैं। तो बाबा कह रहे हैं पाप कर्मों से बचने का साधन है अपने को सदा क्या समझो, लाइट हाउस माइट हाउस समझते हो, जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप कर्म नहीं होता। तो हमेशा ज्ञान का दीप हमेशा जलता रहना चाहिए, उसमें ज्ञान के दीप में हमेशा योग का घृत अर्थात उसमें ताकत बढ़ती रहनी चाहिए। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो, पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। एक मुरली है पुण्य आत्माओं के लक्षण, वो शायद 81 की मुरली है। तो बाबा ने कहा जो पुण्य आत्माएं होंगी वो सबके प्रति उसके मन में शुभ भावना शुभकामना होगी, वो विश्व का कल्याण किए बिना रह नहीं सकती है, उसके मन में सदा शुद्ध संकल्प ही चलेंगे। तो ये क्या हमारे अंदर ये लक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वयं को चेक करने की जरूरत है, बिना सेवा किए वो रह नहीं सकती है। तो पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, और पाप वहां होता है जहां बाप की याद नहीं होती है। तो पाप बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। तो बाबा कहते चेक करो सदा कौन रहता है, पाप खत्म हो गया है। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो, पुण्य आत्मा के बच्चे कौन, तो पुण्य आत्मा कौन है, शिव बाबा पुण्य आत्मा है। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप आत्मा खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वे हाथ उठाओ। और बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में तो पापों का लेखा जोखा भी हिसाब किताब बहुत भारी है, 1000 गुना है। जितना प्लस है उतना माइनस भी है। अज्ञान काल में उतना नहीं था, लेकिन ज्ञान काल में बड़ा हिसाब किताब और मशीनरी सूक्ष्म होती जा रही है, तो ये भी अटेंशन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमको नहीं होता है तो बाबा कहते नींद में कोई पाप कर्म नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें स्वप्न आ रहे हैं तो पाप कर्म हो जाएगा। तो वो भी देखा ना, नींद हमारी डीप स्लीप होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारा काम धंधा छोड़ के नींद ही सो जाए। नींद भी हमारी ठीक तब होगी अगर हमारा पुरुषार्थ ठीक होगा, तो ही हमारी नींद ठीक होगी, नहीं तो नींद में भी स्वप्न आते रहेंगे और नींद में भी फिर विकर्म होते जाएंगे और भी पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। तो भी अभी हमको देखना है। तो ये दृढ़ संकल्प करो, जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वे हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को क्या देते हैं? मुबारक देते हैं। ये भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। तो ये था 7 मार्च 1981 पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन। तो खुद को ही हमको चिंतन करना है, अपनी देखना है कि मेरे अंदर भी कौन कौन से पाप कर्म रहे हुए हैं। दृष्टि से मैं कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा हूं, मन से कोई संकल्प ऐसे तो नहीं चल रहे, या बोल कोई ऐसे तो नहीं निकल रहे, हमारा संबंध संपर्क को ऐसा तो नहीं है कि किसी का जीवन ही अव्यवस्थित हो रहा है, हलचल आ रही है उसके मन में। तो स्वयं को हमको खुद ही सूक्ष्म रूप से दिन प्रतिदिन जांच करनी है कि क्या मैं पाप कर्मों से मुक्त होने का मार्ग खुद निकाल रहा हूं। पुण्य कर्मों का खाता हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, किसी को हम ज्ञान सुनाएं, ज्ञान चर्चा करें, किसी का सहयोग करें, ताकि हमारे पुण्य का खाता इतना भारी हो जाए जो पाप कर्म धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। ओम शांति।